लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबके निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 145वें भजन के 14 से लेकर 19 तक के पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के विगत प्रसारण में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। उक्त पदों में प्रभु भक्तों को आश्वासन दिया गया है कि जो कोई भी प्रभु से विनती करेगा उसकी विनती सुनी जाएगी, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। प्रभु ईश्वर भले हैं, वे सदैव अपने भक्तों की सुधि लेते हैं। कृपालु और दयालु यही है ईश्वर की शाही शैली, उनके प्रताप और उनके वैभव का रहस्य। ईश्वर की भलाई, उनकी दया, उनकी कृपा को मनुष्य उनके महान कार्यों में देख सकता है, क्योंकि भजनकार के अनुसार प्रभु ईश्वर निर्बल को संभालते और झुके हुए को सीधा करते हैं। वे खुले हाथों देते और हर प्राणी को तृप्त करते हैं। वे उन सबके निकट रहते हैं जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। और 145वें भजन के 16वें पद में भजनकार कहता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। यहाँ भजनकार स्मरण दिलाता है कि ईश्वर जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, क्योंकि जो ईश्वर चिड़ियों को दाना देते क्या वे बच्चों को भूखा रहने देंगे। जो उन पर श्रद्धा रखते हैं ईश्वर उनकी पुकार सुनकर उनकी रक्षा करेंगे, उनका मनोरथ पूरा करेंगे। फिर 145वें भजन के अंतिम दो पदों में भजनकार कहता है, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। श्रोताओ, प्रभु ईश्वर विश्वासियों की अखंडता को बनाए रखते हैं जबकि दुष्ट विनाश की ओर जाता है। ईश्वर उन लोगों को विशेष सुरक्षा और विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं जिनमें शालीनता है और जो उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने प्रभु को अपना आश्रय, अपना शरण स्थान स्वीकार किया है। उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा।
तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। वर्णन करते तेरा हर सुगुण, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम।
और अब आइए सामुदायिक आराधना अर्चना के लिए प्रस्तावित स्तोत्र ग्रंथ के 146वें भजन का अवलोकन करें। 10 पदों वाले इस भजन में भी दयालु ईश्वर की स्तुति की गई है। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं, वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। श्रोताओं, इस भजन में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है कि जिस प्रकार भजनकार प्रभु की स्तुति कर रहा था वे सब भी प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार भजनकार की आत्मा प्रभु की स्तुति कर रही थी, उसी प्रकार सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्र समस्त श्रद्धालु अपनी आत्मा यानी कि अपने तन मन और धन से प्रभु की स्तुति करें, वे जीवन भर प्रभु की स्तुति करें। यह प्रस्ताव है कि केवल कुछ दिन, कुछ पल अथवा सप्ताह में एक घड़ी प्रभु से विनती अथवा उनकी स्तुति न की जाए, बल्कि हम जो कुछ करें उसमें प्रभु का गुणगान करें। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल पुस्तकों की पुस्तक है, वह ग्रंथों का ग्रंथ है। बाइबल को हर प्रकार से, हर संभव दृष्टिकोण से जांचा और परखा गया है। जिन पंडितों ने इस धर्मग्रंथ के पदों और पत्रों को सूक्ष्म रीति से पढ़ा और समझने का प्रयास किया है, उनकी यदि सुने तो 146वें भजन का 3रा पद संपूर्ण धर्म ग्रंथ का केंद्र बिंदु है। निश्चित रूप से यह पद हमें परामर्श देता है, किंतु इस परामर्श का अभिप्राय मनुष्यों को अपमानित करना, उनकी उपेक्षा करना अथवा उनकी तौहीन करना कदापि नहीं है, अपितु यह परामर्श मनुष्यों के हित में है। मनुष्य सब समय अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति करे तथा दुनिया भी माया जाल से बचा रहे, यही इसका अभिप्राय है। भजनकार का परामर्श है, न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं, वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। वस्तुतः श्रोताओं, 146वें भजन के उक्त पदों में कड़वा सच हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शासकों, राजनीतिज्ञों और चाहे वे मानवतावादी कार्य में लगे रहने वाले लोग ही क्यों न हो, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे आज कुछ कहते हैं तो कल और कुछ कह सकते हैं, भले ही उनके मन में खोट न हो और वे आपका भला करना चाहते हैं। वे आपको धन दौलत, मकान और दुनिया की सारी सुविधाएं प्रदान करने का वादा कर सकते हैं, किंतु क्या वे अपने वादे पूरे करने में समर्थ हैं? भले ही मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से भी वे वादे करें, उन्हें खुद भी यह पता नहीं होता कि कल तक वे जीवित रहेंगे भी या नहीं। मनुष्य यह कदापि न भूले कि वह क्षण भंगुर है, उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो उसके सब वादे, उसकी सब प्रतिज्ञाएं और समस्त योजनाएं व्यर्थ ही हैं, वे पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए भजनकार का परामर्श है कि मनुष्य शासकों में नहीं अपितु केवल ईश्वर में विश्वास करें, जो उन्हें बचाने में समर्थ हैं, उन्हीं की स्तुति करें, हर पल उन्हीं को धन्य मनाएं।
तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाएं हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। वर्णन करते तेरा हर सुगुण, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कलीसिया में प्रार्थना एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए हम ईश्वर से बातचीत करते और उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। संत पापा ने विश्वासियों से कहा कि प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने 15 अप्रैल के ट्वीट संदेश में लिखा, जब एक ख्रिस्ते प्रार्थना करता है तो मौत भी कांपने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि हर व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसका संबंध पुनर्जीवित प्रभु से है, जो उससे अधिक शक्तिशाली है। संत पापा ने बुधवार को अपनी धर्म शिक्षा माला में बतलाया था कि प्रार्थना करना और प्रार्थना करने की शिक्षा देना कलीसिया का एक मुख्य कर्तव्य है। हमें विश्वास के दीप एवं प्रार्थना रूपी तेल को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करना है। विश्वास का दीप हमें प्रकाशित करता है। वास्तव में इसके द्वारा चीजें व्यवस्थित होती हैं। अगले रविवार 18 अप्रैल से संत पापा फ्रांसिस पुनः संत पेत्रस प्रांगण के ऊपर प्रेरितिक आवास की खिड़की से विश्वासियों के साथ स्वर की रानी प्रार्थना का पाठ करेंगे। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बाद रविवार 18 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस पुनः संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर स्वर की रानी प्रार्थना का पाठ करेंगे। महामारी के उतार चढ़ाव और इटाली सरकार द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए एहतियाती उपायों के परिणाम स्वरूप पोप ने कई अवसरों पर प्रेरितिक आवास की पुस्तकालय से संचार माध्यमों के द्वारा विश्वासियों को अपना संदेश दिया है। पिछले हफ्तों 21 मार्च से 5 अप्रैल तक खिड़की को बंद कर दिया गया था और 28 मार्च को खजूर रविवार के दिन संत पापा ने महागिरजाघर से ही देवदूत प्रार्थना का पाठ किया था, जबकि पिछले सप्ताह दिव्या करुणा महापर्व के दिन उन्होंने रोम के सांतो स्पिरितो गिरजाघर से ही स्वर की रानी प्रार्थना का पाठ किया। पिछले साल पहले लॉकडाउन ने विश्वासियों को 8 मार्च से 24 मई तक संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण से दूर रखा था। उस दौरान भी संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से लाइव प्रसारण के माध्यम से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। एक नाइजीरियाई युवा धर्म सामाजिक लिबिनुस नामानी का पुरोहित अभिषेक पोप फ्रांसिस द्वारा समय से पहले अभिषेक प्राप्त करने की अनुमति मिलने के बाद 1 अप्रैल को रोम में संपन्न हुआ। वे ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं के कैंसर से पीड़ित हैं। 31 वर्षीय गुरुकुल छात्र ने संत पापा से पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें पुरोहिताभिषेक प्रदान किया जाए और 1 अप्रैल को अभिषेक किए जाने की इच्छा जाहिर की थी। रोम के सहायक धर्माध्यक्ष दानियल लिबानोरी ने लिबिन्यूज को रोम में कसेलिनो अस्पताल में 5 पुरोहिताभिषेक प्रदान किया। नवाभिषिक्त फादर लिबियनुस ने अपनी बुलाहट की यात्रा दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया के ओवेरी में शुरू किया था, जहां उन्होंने 20 साल की उम्र में ईश माता ऑर्डर में प्रवेश किया। अपने पहले मन्नत के बाद ही वे ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। उपचार की चुनौतीपूर्ण अवधि को पार करने के बाद 2 साल पहले उन्हें बेहतर उपचार एवं आगे की पढ़ाई के लिए इटली भेजा गया। बीमारी और लक्षित उपचारों के बावजूद लिबियनुस ने अंजेलिकुम विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखी और पिछले सितंबर को अपना अंतिम मन्नत दोहराया, किंतु बीमारी बढ़ जाने के कारण वे अधिक समय अस्पताल में रहने लगे और पुरोहिताई के लिए अपने प्रशिक्षण को पूरी करने की चाह अनिश्चित दिखाई देने लगी। परिणामतः लिबियनुस ने संत पापा फ्रांसिस को एक पत्र लिखने का निश्चय किया तथा पुरोहिताभिषेक के लिए अनुमति मांगी। जवाब तुरंत 31 मार्च को मिला। संत पापा ने उन्हें अनुमति दे दी और उसके दूसरे ही दिन लिबियनुस को पुरोहिताभिषेक प्रदान किया गया। धम्मदक्ष लिबानोरी ने उपदेश में कहा, इस वरदान के साथ पिता ईश्वर आपको विभूषित करना चाहते हैं, ताकि आप उस इम्तिहान को पूर्ण रूप से जी सकें जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है। वर्तमान में फादर लिबियनुस ने अपनी प्रेरिताई कसिलिनो अस्पताल में शुरू की है, जहां वे प्रतिदिन डॉक्टरों, नर्सों एवं रोगियों को आशीष प्रदान करते हैं। पेरिस में नोटरडम महागिरजाघर में भयंकर आग लगने के 2 साल बाद भी महागिरजाघर की मरम्मत जारी है। धर्माध्यक्ष एरिक अमोनियर ने सदियों पुराने गिरजाघर में चल रहे मरम्मत के कार्य के बारे बतलाया। 15 अप्रैल 2019 को विश्व ने पेरिस के नोटरडम गिरजाघर को भयंकर आग से जलते हुए देखा था। यद्यपि महागिरजाघर का मीनार ढह गया तथा लकड़ी की सैकड़ों धरने से बनी छत अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गई। अग्निशामकों के साहसी प्रयास से इस धार्मिक धरोहर को पूरी तरह समाप्त होने से बचा लिया गया। उन्होंने कहा, विध्वंसकारी आग लगने के 2 साल बाद इसकी मरम्मत का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा है, किंतु उम्मीद बनी हुई है कि महागिरजाघर अपनी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करेगा। वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में धर्माध्यक्ष एरिक ने बतलाया कि मरम्मत का कार्य जारी है एवं महागिरजाघर को फिर पहले जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फरवरी में धर्माध्यक्ष एरिक को पेरिस धर्म प्रांत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ताकि नोटरडम महागिरजाघर के पुनः उद्धार का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। पुनः निर्माण कार्य में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए धर्माध्यक्ष ने कहा कि भवन को सुरक्षित करने का चरण लगभग पूरा हो चुका है और अब पुनः उद्धार के कार्य को शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। धर्माध्यक्ष ने गौर किया कि महागिरजाघर में काम जारी रहने के बावजूद सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए इसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पुण्य सप्ताह के दौरान कलीसिया की निरंतर प्रार्थना को दर्शाने के लिए महाधर्माध्यक्ष की उपस्थिति में धर्म विधि सम्पन्न की गई। धर्माध्यक्ष एरिक ने पेरिस के लोगों की प्रतिक्रिया और रुचि पर भी गौर किया, जो पुनर्निर्माण के कार्य को निकट से देख रहे हैं और उनके पुनः खुलने की उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इराक में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा के बाद बेबीलोन के खलदेई प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल मार लुइस रफाल साको ने इस सप्ताह मध्य पूर्वी कलीसियाओं के परिषद के साथ एक ऑनलाइन सभा में भाग लिया। मध्य पूर्वी कलीसियाओं के परिषद की वेबसाइट अनुसार सभा का उद्देश्य था इस ऐतिहासिक यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने और मध्य पूर्वी कलीसियाओं की उपस्थिति, अंतर धार्मिक वार्ता और इराक में शांति तथा नागरिकता की संस्कृति के प्रसार में मध्य पूर्वी कलीसियाओं की परिषद की भूमिका पर गौर करना। सभा में हुई चर्चाओं के बारे बतलाते हुए कार्डिनल साको ने प्रेरितिक यात्रा के सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति ने किस तरह क्रिस्त समुदाय के प्रति डर के घेरे को तोड़ दिया है और उन्हें साहस प्रदान किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।